आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत तबकात की बहबूद और तरक्की पर खसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। जनाब शाह आज राजस्थान के शहर अलवर में रियासत के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उन्होंने वाजे किया कि 2014 से 2026 तक मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए अहम स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, ने कम से कम इमदादी कीमत में मुसलसल इजाफा किया है।
2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
जनाब शाह ने देही मईशत की काया पलट करने में डेयरी के शोबे की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि ज्यादा पैदावार देने वाली गायें और भैंसें पूरे राजस्थान में हर एक घराने तक पहुंच सकें। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा से अपील की है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल की रहनुमाई में अपने इल्म, महारत और इख्तरा को कौम की तामीर के लिए बरूए कार लाएं। चेन्नई के करीब कट्टन कुलथूर में वाक़े SRN इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी के 22वें जलसे तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सफर में नौजवानों का रोल अहमियत का हामिल है। कोरोना वबा के दौरान भारत के रोल का जिक्र करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि इंसानियत और आलमी फलाह बहबूद के पेश नज़र भारत ने 100 से ज्यादा ममालिक को कोविड वैक्सीन फराहम की। उन्होंने 2014 से आला तालीम की तौसी को उजागर करते हुए कहा कि आला तालीम में खवातीन की शिरकत में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने उभरते हुए शोबाजात मसलन मसनूई जहानत, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक और हयातियाती टेक्नोलॉजी की अहमियत को भी उजागर किया। नायब सदर ने कहा कि तहकीक की असल कामयाबी उसी वक्त है जब इससे मुआशरे को फायदा पहुंचे। محصولاتی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹریٹ ڈی آر آئی نے بھارت میں جنوب مشرقی ایشیائی سپاری یعنی چھالیا درآمد کرنے میں ملوث ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ نیٹ ورک سپاری کو بنگلہ دیش کی پیداوار بتا کر جنوبی ایشیائی آزاد تجارتی علاقے سافٹا کے تحت دھوکہ دہی سے ڈیوٹی میں رعایت کے فوائد حاصل کر رہا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
ڈی آر آئی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران حاصل کردہ معلومات سے پتہ چلا کہ کچھ گروہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ذریعے ایس اے ایف ٹی اے کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ گروہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پیدا ہونے والی سپاری یعنی چھالیا درامد کرتے تھے لیکن اسے بنگلہ دیش کی پیداوار بتاتے تھے۔ اطلاعات کی بنیاد پر ڈی آر آئی نے کولکاتہ اور وشاکھاپٹنم میں درامد کار، کسٹم بروکرز اور آئی ای ایس ہولڈرز سے وابستہ کئی مقامات پر بیک وقت تلاشی کی کاروائی کی۔ اس دوران کئی ایسے دستاویزات اور دیگر شواہد ملے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سپاری در حقیقت جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے درامد کی گئی تھی۔ ڈی آر آئی کے افسران نے تقریباً 75 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے ہیں۔ شبہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر درامد کیے گئے سامان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 160 میٹرک ٹن سپاری کی ایک کھیپ ضبط کی گئی ہے۔ مذکورہ گروہ کے دیگر ممبران کی شناخت اور اس سے ہوئے نقصان کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گنگائی، مغربی بنگال اور اڈیشہ میں کل کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 دنوں کے لیے جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آسام، میگھالیہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں کل شدید بارش ہونے کی توقع ہے۔ اڈیشہ میں تازہ سیلاب آنے کا اندیشہ ہے کیونکہ شمال مغربی خلیج بنگال پر کم دباؤ کے حلقے میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
اڈیشہ کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ 49 بلاک اور 5 شہری علاقے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,37,000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں تقریباً 293 راحتی کیمپ کام کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری انو گرگ نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں حکام کو ہدایت دی کہ وہ ڈیوٹی پر رہیں اور اپنی چھٹیوں کو منسوخ کر دیں۔ آکاشوانی نیوز بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن۔
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمائیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنس کا بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت جمائیکا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کی دل سے قدر کرتا ہے، نیز خصوصی اور قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے تئیں پر امید ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ کل نئی دلی میں قومی انوبھو ایوارڈز 2026 تفویض کریں گے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب میں پینشن متر پر ایک کتابچہ اور ملک گیر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل ایس مہم کے لیے 5 رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر میں جموں پونچھ قومی شاہراہ پر سنگل ٹنل کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ یہ ٹنل راجوری اور پونچھ کے 2 ضلعوں نیز متصل علاقوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو بہت زیادہ بہتر کرے گی۔ سرحدی شاہراہوں کی تنظیم کے ذریعے تعمیر کردہ اس ٹنل کو پہلے 22 اگست کو عوام کے لیے کھولنے کا پروگرام تھا، البتہ اسے یوم آزادی کے تحفے کے طور پر وقت سے پہلے ہی کھول دیا گیا ہے۔ یہ صارفین کو راحت فراہم کرے گی اور خطے میں سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
کالیدھر رینج سے ہو کر گزرنے والی 2.79 کلومیٹر طویل یہ اہم ٹنل تعمیر کی گئی ہے۔ یہ موجودہ روٹ کے مشکل حصے کو بائی پاس کرے گی اور توقع ہے کہ اس سے تقریباً 13 کلومیٹر کا سفری فاصلہ کم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ سفر کے وقت میں بھی نمایاں کمی کرے گی۔ اخنور، راجوری، پونچھ شاہراہ پر سڑک چوڑا کرنے اور اپ گریڈیشن کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے جس کے باعث یہ ٹنل کھولی گئی ہے۔ سنگل ٹنل کی تعمیر تقریباً 600 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے کی گئی ہے۔ اب جبکہ اس ٹنل کو عوامی نقل و حرکت کے لیے کھول دیا گیا ہے، اس پر کچھ تعمیری اور حتمی کام किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ छोटी गाड़ियों को इस टनल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। भारी गाड़ियां, बसें और साजो सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों को अभी तक इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि इस पर अभी कुछ काम होना बाकी है। भारी गाड़ियों की नकल हरकत को इस काम के पूरे होने के बाद आने वाले महीनों में आमदोरफ्त की इजाजत दी जा सकती है। आकाशवाणी न्यूज जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
यूक्रेन और रूस ने आज एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए, जिसमें दोनों जानिब कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन ने इस जंग में अपने सबसे बड़े फजाई हमलों में से एक में पूरे रूस में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया, इनमें 6 अफराद हलाक हो गए। 3 कस्बों पर हमलों के बाद रूस के जनूब मगरबी खित्ते में 5 अफराद हलाक हो गए। 150 से ज्यादा ड्रोन्स के हमलों में बहुत से घर और एक रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि जंगल में आग भड़क उठी है। मास्को खित्ते में एक निजी घर पर यूक्रेन के ड्रोन के एक हमले में 48 साल शख्स हलाक हो गया। मास्को के गवर्नर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यूक्रेन के हमले में एक वेयर हाउस में आग लग गई। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने रात के दौरान 822 यूक्रेन के ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। FIH खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में ग्रुप मरहले के मैच में चीन के खिलाफ 2-2 से सनसनीखेज ड्रॉ के साथ अपने मुहिम का आगाज किया। नवनीत ने 8वें मिनट में भारत को इब्तदाई बर्तरी दिलाई, लेकिन चीन ने 15वें मिनट में जोंग यिंग के पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल करके बराबरी कर ली। दीपिका ने 25वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत की बर्तरी को बहाल किया। तीसरे क्वार्टर में चीन की मैनिंग ने 39वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर गोल करके स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। भारत और चीन पूल डी में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ हैं। पूल से सरे फहरिस्त 2 टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत इस आलमी चैंपियनशिप की 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। भारत को मर्दों के सिंगल्स, खवातीन के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स में 2-2 एंट्रीज हासिल हुई हैं, जबकि मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में 3 भारतीय जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। केएल राहुल ने 82 रन, जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट, जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए, जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डिली और गायत्री गोपीचंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।